सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ
ಜವಲೋ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯಕ್ಷ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ನಿಯಮ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಸಮಸ್ತ ಮುನಿ ಸಂಘ ಕೀ ಜಯ
प्रथम पाठ का दूसरा प्रश्न पढ़ना है और उसे समझना है। धर्म की उत्पत्ति किसमें होती है? धर्म की उत्पत्ति आत्मा में होती है और स्वयं आत्मा के द्वारा होती है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, वह साधन रूप रहे अथवा साध्य रूप रहे, उन दोनों को धर्म कहा जाता है। इन दोनों का आधार पंच परमेष्टि होते हैं, अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, इन चारों के पास साधन रूप धर्म होता है। अतः सिद्ध परमेष्टि के पास साध्य रूप धर्म होता है। सारभूत उत्तर है। धर्म की उत्पत्ति के बारे में विचार किया गया है। धर्म धर्म की उत्पत्ति आत्मा में होती है। आत्मा आधार है और धर्म आधे है। आधार के बिना आधे नहीं होता। आधार आधे का संबंध है धर्म और आत्मा में। आधार आधे का संबंध है। आधार कौन है? आत्मा आधार है। आत्मा द्रव्य है। द्रव्य आधार होता है और धर्म आधे रूप होता है। जैसे अग्नि द्रव्य है। अग्नि क्या है? द्रव्य है। और उष्णता अग्नि का धर्म है, गुण है। उष्णता अग्नि को छोड़कर नहीं होती। उष्णता अग्नि को छोड़कर नहीं होती। अग्नि और उष्णता ये दोनों एक आधार है और एक आदेह है। इस प्रकार दोनों में आधार आदेह का इसमें भी संबंध है। चाहे हम अग्नि का उदाहरण दे, चाहे जल का उदाहरण दे, चाहे अन्य किसी प्रकार का उदाहरण दे, उदाहरण समझाने के लिए होता है। धर्म किस में होती है इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। जल भी एक वस्तु है, आत्मा भी एक वस्तु। इन दोनों में अपने अपने गुण का और द्रव्य का जरूर कुछ अंतर पाया जाता है, अंतर होता है। क्या अंतर है इसी बात को बताया जा रहा है। आधार आधे का अंतर है। धर्म आधेभूत होता है और धर्म को धारण करने वाला जो द्रव्य है वो आधारभूत होता है। जल एक द्रव्य है और जल का जो गुण रहेगा वह उसका धर्म रहेगा। धर्म का निवास द्रव्य है और द्रव्य उस निवासभूत गुण का आधार रहेगा। तो पानी के पास शीतलता है, अग्नि के पास उष्णता है, आत्मा के पास धर्म है। ये तीन चीजें हो गई। जल की शीतलता जल का धर्म है। आत्मा का रत्नत्रय या आत्मा का विशुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था उसका स्वभाव होने से वह धर्म है। ये धर्म सदा नहीं होता, कभी होता है और कभी नहीं होता। आत्मा का धर्म अनादि से नहीं था, उत्पन्न होने के उपरांत अनादिकल तक रह सकता है, पर वह अनादि से नहीं था। उत्पन्न हुआ तो अनादिकाल तक रह सकता है, इसलिए हम आत्मा के धर्म को ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धर्म सादि अनंत है। ये क्या कह दिया महाराज? सादि अनंत। सादि यानी क्या? सादि सादि आदि से सहित को सादि कहते हैं। पहला नहीं था, अब है और अनंत काल तक रहेगा। पहला नहीं था, अब है और अनंत काल तक रहेगा, इसी को सादि अनंत कहते हैं। अनादि काल से हमारे पास धर्म था क्या? अधर्म था? अधर्म था। अनादि काल से तो हमारे पास अधर्म था, आज हमने अधर्म को दूर किया तो हमारे पास धर्म की उत्पत्ति हो गई। ये उत्पन्न धर्म हमारे साथ कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अनादि काल तक नहीं, अनंत काल तक। अनादि काल से तो अधर्म रहा है अपने पास, पर अनंत काल तक अब क्या रहेगा? धर्म रहेगा। पानी स्वभाव से शुद्ध है, अग्नि स्वभाव से उष्णमय है, स्वभाव से उष्णमय है अग्नि। अग्नि पहले भी उष्णमय थी, अभी भी उष्णमय है और अनंत काल तक उष्णमय ही रहेगी। जल अनादि से क्या था? शीतल था। वो स्वभाव से शीतल है और उसका स्वभाव शीतल होने से वो अनादि है, पर अपने शीतलता को वह त्याग सकता है कि नहीं? त्याग सकता है कुछ समय के लिए। क्या करने से? गर्म करने से। जल को गर्म किया तो उसकी शीतलता चली गई। गर्म करने से चली गई, अगर दरअ गर्म न करते तो शीतलता भी नहीं जाती। शीतलता उसका धर्म है। जल का धर्म शीतलता, गर्म उसका धर्म नहीं। गर्म होना उसका स्वभाव नहीं, गर्म होना उसका विभाव है। एक बार गर्म हुआ तो कब तक गर्म रहेगा? कुछ समय के लिए। फिर क्या होगा? फिर शीतल हो जाएगा। जल का स्वभाव शीतलता। जल बहुत अच्छा है, आत्मा से भी जल अच्छा है। आत्मा ठीक नहीं है, अपना स्वभाव शुद्ध होने के बावजूद भी वह और वह स्वभाव अपना स्वभाव होने के बावजूद भी शुद्ध स्वभाव अपना स्वभाव है और वह अपना स्वभाव अपना ही है। इस इतना होने के बावजूद भी हम स्वभाव में अनादिकाल से नहीं थे, विभाव में थे, हम गर्म थे। शीतल नहीं थे, गर्म थे, और गर्म थे इसलिए अपने गर्मपने को त्याग कर अपने आप में आने के लिए अपने आप में आने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जल अनादि से शीतल था, किसी ने गर्म किया तो गर्म हो गया, तब वह अपने धर्म को न त्यागते हुए विभाव रूप कन्वर्ट होते हुए वह अपने स्वभाव से भटककर गर्म हो गया। परंतु आत्मा अनादि से विभाव ही है, गर्म ही है। आत्मा गर्म होता है? नहीं, गर्म नहीं होता, पर उदाहरण दिया जा रहा है। आत्मा अशुद्ध ही है अनादि से, जल गर्म नहीं है अनादि से, गर्म हो सकता है। आत्मा शुद्ध नहीं है अनादि से, अनादि काल से शुद्ध नहीं था, शुद्ध बन सकता है। तो आत्मा को शुद्ध हम बना सकते हैं कि नहीं? शुद्ध बना सकते हैं। क्या करके बनाना पड़ेगा? रत्नत्रय को धारण करके इसके भीतर जो मलिनता है, विभावपना है, अशुद्धता है, उस विभावपने को, उस अशुद्धता को खत्म करके इसको शुद्ध बना सकते हैं। इसकी शुद्धता ही इसका धर्म है, आत्मा की शुद्धता ही आत्मा का धर्म है। ये भी एक वस्तु ही है, चेतन वस्तु, अनादि से भटका हुआ था, अशुद्ध था, विभाव रूप में कन्वर्ट था, अधर्म उसके पास था और वह अनादि से था। अधर्म हम लोगों के पास कब से है? अनादि से। और धर्म कब से आएगा? जब हम धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? रत्नत्रय को। रत्नत्रय ही धर्म है, परंतु रत्नत्रय आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। रत्नत्रय आत्मा को शुद्ध बनाने का साधन है, साधन क्या है? साधन है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक तरीका है कि इस तरीके के माध्यम से हम अपनी आत्मा के भीतर रहने वाले कर्मों को, अपने आत्मा के भीतर रहने वाले विभाव परिणति को, अपने आत्मा के भीतर रहने वाले अशुद्ध स्वभाव को दूर करके हमें शुद्ध स्वभाव बनना है। अशुद्ध को दूर करना हो तो रत्नत्रय उसके लिए साधन है। जैसा कि वस्त्र मलिन होता है, गंदा होता है, तो उसको धोने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी तीन वस्तु चाहिए। जैसे आत्मा को शुद्ध करना हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए, उसी प्रकार वस्त्र को दूर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, उसके मलिनता को दूर करने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। और जल मिल गया, केवल जल से तो साफ नहीं हो सकता, और क्या चाहिए, साबुन चाहिए। जल भी मिल गया, साबुन भी मिल गया, और क्या चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। वस्तु में और क्या चाहिए, वस्तु और क्या चाहिए। जल मिल गया, साबुन मिल गया, और एक वस्तु चाहिए ना, है? उस जल को रखोगे किस में, बर्तन भी चाहिए कि नहीं, बर्तन भी चाहिए। बर्तन मिला, जल मिला, साबुन मिला, इससे क्या धोना है, अपने कपड़े को धोना है, और धोने के लिए कौन चाहिए, स्वयं चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। आत्मा में क्या चाहिए, तो पुरुषार्थ चाहिए। आत्मा जब तक उस वस्त्र को धोने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वस्त्र भी साफ नहीं होगा। तो धो, तो जल साधन हुआ, साबुन भी साधन हुआ, और बाल्टी भी साधन हुआ। इसमें सम्यक दर्शन कौन, उदाहरण के रूप में घटाना, वस्त्र और जल और इत्यादि जो होते हैं, इनको सम्यक दर्शन किसको कहें, जल को सम्यक दर्शन कहें और साबुन को सम्यक ज्ञान कहें और बाल्टी को सम्यक चारित्र कहें। ये तीनों मिल करके जल को, जल की नहीं, वस्त्र की अशुद्धता को दूर करने का साधन है। तीनों मिलकर साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिल करके एक बन करके मोक्ष मार्ग होता है। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। उसी प्रकार जल, साबुन और बाल्टी, इन तीनों के मिलने पर ही वस्त्र की स्वच्छता होगी। वस्त्र तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक कि तीनों न मिले। जल को रखने के लिए बाल्टी चाहिए और घिसने के लिए साबुन चाहिए और धोने के लिए जल चाहिए और धोने वाला भी चाहिए। तो उसी प्रकार आत्मा अनादि से अधर्म से युक्त है। इसको धोने के लिए तीन पदार्थ हमारे पास होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना, सम्यक चारित्र होना। यही उत्तर इस प्रश्न के भीतर दिया गया है। धर्म की उत्पत्ति आत्मा में होती है और स्वयं आत्मा के द्वारा होती है। पुरुषार्थ कौन करेगा रत्नत्रय को धारण करने का, आत्मा ही करेगा। धर्म आत्मा का स्वभाव है। वह साधन रूप रहे या साध्य रूप रहे, धर्म दो प्रकार का हो गया, साधन रूप भी होता है और साध्य रूप भी होता है। साधन रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये साधन रूप हुआ। इसके माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने पर, उस आत्मा को स्वभाव में ले आने पर, आत्मा की जो शुद्ध दशा है उसी को धर्म कहते हैं। परंतु साधन को भी धर्म कहा। साध्य रूप धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वो शुद्ध है। शुद्ध तो धर्म है ही, परंतु उस शुद्ध को उत्पन्न करने के लिए जिस सामग्री को हमने अपना लिया, वह सामग्री भी धर्म हुआ, यानी सम्यक दर्शन भी धर्म हुआ, ज्ञान भी धर्म हुआ और सम्यक चारित्र भी धर्म हुआ। इसका पुरुषार्थ हमने किया और पुरुषार्थ करके आत्मा को शुद्ध बना लिया, आत्मा के भीतर रहने वाले सारे कर्मों को धो दिया, नष्ट किया, तो धर्म की उत्पत्ति हो गई। इन दोनों का साधन परमेष्टि होते हैं, दोनों का आधार परमेष्टि होते हैं, यानी साधन रूप धर्म का आधार भी परमेष्टि है और साध्य रूप धर्म की उत्पत्ति का आधार भी परमेष्टि है। धर्म कहाँ है ये पूछा जाए तो यही कहना पड़ेगा परमेष्टियों के पास ही धर्म होता है। क्या श्रावक के पास भी होता है, गृहस्थों के पास भी होता है? क्या धर्म होता है? हो सकता है। हाँ, क्या करने पर? रत्नत्रय धारण करने पर। वो रत्नत्रय धारण करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? मुनि दीक्षा ही लेनी पड़ेगी। दिगंबर दीक्षा लिए बिना सम्यक चारित्र नहीं आता, संयम नहीं आता। श्रावक रह करके संयमी बन सकते? संयमी का मतलब क्या? संयमी का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतकर इंद्रिय संयमी बनना और हिंसा को दूर करके अहिंसक बनना, प्राणियों की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, अपने जीवन के समस्त हिंसा को दूर कर देना। जीवों की हिंसा अवश्य होती है, होती कि नहीं होती? मुनि महाराज के जीवन में जीव हिंसा हो सकती है क्या? नहीं। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, पांच प्रकार के स्थावर कायिक जीव हैं। इनकी हिंसा मुनि महाराज नहीं करते, जीवन पर्यंत के लिए उस हिंसा का त्यागी हैं। इस हिंसा का भी त्यागी होते हैं। उनके माध्यम से पांच स्थावर कायिक जीवों की हिंसा भी नहीं होती और त्रिकायिक जीव कितने प्रकार के होते? 24 ठाना में आया था ना, त्रिकायिक जीव कितने प्रकार के हैं? दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव और पांच इंद्रिय वाले जीव, ये त्रिकायिक कहलाते हैं। दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रिकायिक जीव और एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कायिक जीव कहते हैं। ये छह कायिक जीव हैं, इनकी रक्षा कर के बिना संयमी नहीं कहला सकते अपन। और रक्षा कौन कर सकता है? मुनि महाराज ही कर सकते हैं। इसलिए श्रावक के जीवन में संयम प्रकट होना संभव नहीं, श्रावक रहते रहते। यदि श्रावक मुनि बन गए तो संयम प्रकट हो सकता है, पर श्रावक रहते रहते श्रावक अवस्था में ही पूर्ण संयम प्रकट हो जाए ये कभी संभव नहीं। क्या संभव है? नहीं है। आप जल का उपयोग करते हैं, जल से स्नान करते हैं, जल से कपड़े धोते हैं, जल को गर्म करते हैं, जल से भोजन बनाते हैं, जल का प्रयोग बहुत जगह होता है श्रावक दशा में। क्या जल का एक जीव को मुनि की तरह श्रावक जल का एक जीवों को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। अग्नि को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। अग्नि भी जलानी पड़ती है। अभी 7:15 बजेगा तो अग्नि को जलाने के लिए ही जाने वाले हैं। जलाना ही पड़ता है, नहीं तो खुद कैसे भोजन करोगे और महाराज को कैसे उठाओगे? समस्या है। श्रावक रहते रहते इस समस्या की पूर्ति तो हो नहीं सकती, हिंसा तो होगी ही होगी। ये जीव हिंसा असंयम है, असंयम धर्म अधर्म है और संयम धर्म है। जीवों की रक्षा संयम है और जीवों की हिंसा असंयम है। इंद्रियों को जीतना जीतना यह धर्म है और जीत न पाना अधर्म है। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो प्रकार का संयम मुनि महाराज अपने जीवन में धारण किए हुए होते हैं। दो प्रकार का संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणियों की रक्षा करके प्राणी संयम धारण करते हैं और इंद्रियों को जीतकर इंद्रिय संयम धारण करते हैं। यह संयम धर्म है और इसको चाहे संयम कहो चाहे चारित्र कहो, एक ही बात है। संयम भी कह सकते हैं और चारित्र भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसी संयम को धारण करने पर जीवन में पूज्यता आती है। पूज्यता जैन धर्म के अनुसार पूज्य हम किसको समझते हैं? पांच परमिष्टियों को या पांच परमिष्टियों को छोड़कर अन्य जीवों को भी पूज्य समझते हैं? पांच परमिष्टियों को ही पूज्य समझते हैं। देव, शास्त्र और गुरु ये पांच परमिष्टियों के अंदर ही होते हैं। देखो कैसे होते हैं, नमोकार मंत्र में पांच पद हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन पांच पदों में भगवान रूप पद, भगवान कहने के लिए अरहंत कहते हैं अपन, अरहंत भगवान हैं और सिद्ध परमिष्टि भी भगवान हैं, किंतु शेष तीन परमिष्टि क्या हैं? अरहंत भगवान हो गए और सिद्ध भगवान भी भगवान है, दो भगवान है और तीन क्या है? साधु परमिष्टि। कौन सा पद है, गुरु पद है कि भगवान पद है? उनको गुरु पद है। तीन परमिष्टि गुरु हैं और दो परमिष्टि भगवान हैं। अब इनकी वाणी वो क्या है? वो शास्त्र है। शास्त्र का मतलब जिस वाणी को जिसमें लिखा गया, जिसकी वाणी को जिसमें लिखा गया वो शास्त्र बन गया। तो वाणी ही शास्त्र है, वाणी ही ग्रंथ है। उसको लिखने के पश्चात उसको ग्रंथ कहा या तो शास्त्र कहा, लिखने से पहले वाणी थी। देव, शास्त्र और गुरु, या यूं कह दो देव, गुरु और शास्त्र। इसमें शास्त्र पहला है या देव पहला है? देव पहला। देव के बिना शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती। देव हो तभी उपदेश होगा और उपदेश होने के बाद शास्त्र बनेगा। इसलिए पहले देव हैं, फिर शास्त्र है और इसके उपरांत फिर गुरु हैं। गुरु की उत्पत्ति बाद में, भगवान पहले थे। हाँ ये विचार करो, देखेंगे बहुत अच्छी बात है। भगवान पहले थे क्या गुरु पहले थे? इसमें पहले कौन? देखो अलग अलग बता रहे हैं सभी। हाँ पहले साधु हो गए। साधु बनने के लिए उपदेश तो मिला होगा ना उनको? वो उपदेश किसका मिला था? केवली भगवान से। तो केवली भगवान की वाणी के आधार से ही तो साधु बन गए। साधु बनने से पहले इसका मतलब भगवान थे और उनकी वाणी के आधार से ही साधु बन गए। गुरु पहले बनेंगे बाद में भगवान बनेंगे, वो जो भगवान बनेंगे अभी नहीं बने हैं उनके लिए है, पर वो जब तक नहीं बने थे उससे पहले कौन थे, भगवान थे कि नहीं? हाँ नहीं, डायरेक्ट भगवान नहीं बनते, ये तो हाँ दिगंबर दीक्षा लेने वाला गुरु हो गया, पर दिगंबर दीक्षा किस आधार से लिया? उपदेश मिले बिना क्या दिगंबर दीक्षा लिया क्या? तो शास्त्र के आश्रय को लेकर के ही तो भगवान बनना हुआ, और ये शास्त्र की रचना किससे हुई, भगवान से हुई कि गुरु से हुई? रचना यानी लिखने वाले गुरु हो सकते हैं, खिराने वाले कौन होते हैं? वाणी। ये गंधर्व परमेष्टि के पास भी मूलतः नहीं है वाणी, वो जो गंधर्व परमेष्टि उपदेश देते हैं वो अरहंत का लेकर के ही उपदेश देते हैं। गंधर्व से पहले भी भगवान हैं, भगवान की वाणी जब खिरी तब गंधर्व ने उस वाणी को एकत्रित किया और सबको बांट दिया, उन्होंने संग्रह किया। तो वाणी मूल किसकी है? मूल में भगवान की ही वाणी है। तो हम गुरु बनने से पहले, हमारे पहले भगवान होते हैं या केवल गुरु ही रहते हैं? भगवान होते हैं, सही है, भगवान पहले हैं बाद में गुरु हैं, पर वो भगवान भी जब भगवान बने उससे पहले गुरु तो थे, हाँ वो साधु थे या तो आचार उपाध्याय परमेष्टि में से कोई परमेष्टि तो थे, वो भी गुरु थे, स्वयं दीक्षित थे, तीर्थंकर भगवान स्वयं दीक्षित थे, ठीक है, स्वयं ही गुरु बन गए, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, तीर्थंकरों को स्वयंभू भी कहते हैं। तीर्थंकरों को कोई उपदेश की जरूरत नहीं, पूर्व का सहारा लेकर वे दिगंबर मुनि दीक्षा नहीं लेते, विदाउट सहारे से ही गुरु बन जाते हैं, रत्नत्रय धारण कर लेते हैं, उनको पूर्व भव से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। देखो तीर्थंकर बनने वाला जीव डायरेक्ट तीर्थंकर नहीं बनता, कहीं न कहीं से पूर्व भव से या उसी भव से दूसरे का उपदेश सुन करके ही सम्यक दर्शन आदि धारण करेगा, फिर सम्यक दर्शन धारण करने के बाद ही तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म को बांधेगा और पुण्य कर्म को बांध करके ही तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बनते समय तो स्वयं बनेगा, पर सम्यक दर्शन धारण करते समय और तीर्थंकर पुण्य कर्म को बांधते समय वो स्वयं नहीं बांध सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता सम्यक दर्शन को। विशेष बात है, समझने की है, बहुत बड़ी बात है। अभी तीर्थंकर बने ही नहीं थे, बनने की योग्यता है, बनने वाले हैं, पर बनने से पूर्व तीर्थंकर पुण्य कर्म को बांधने के लिए क्या सम्यक दर्शन नहीं चाहिए? क्या एकाएकी मिथ्यात्व के साथ तीर्थंकर पुण्य कर्म को बांधेगा? नहीं, बांध नहीं सकता। तीर्थंकर पुण्य कर्म बंधे बिना तीर्थंकर कोई नहीं बनते, और तीर्थंकर पुण्य कर्म बंधने के उपरांत फिर उनको कोई किसी की जरूरत नहीं, वे स्वयं गुरु बन सकते हैं, किसी की वाणी को सुन करके नहीं बनते। लेकिन परंपरा से देखा जाए तीर्थंकर भगवान भी किसी भगवान का आश्रय लेकर के ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके थे, इसमें कोई संदेह नहीं। सम्यक दर्शन किसके आश्रय से हुआ? केवली भगवान के वाणी के आश्रय से ही सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो उनको फिर किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। एक विशेष बात है, जिसको तीर्थंकर पुण्य कर्म का बंध होता है वह जीव विशेषता यह है कि वह पंच परमिष्टियों में से चार परमिष्टि को नमस्कार नहीं करते। क्या समझा रहे हैं? ध्यान दे रहे? जो तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लेते हैं, बंधने के बाद वे चार परमिष्टि को नमस्कार नहीं करते। कौन कौन से परमिष्टि? अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन चार को नमस्कार नहीं करते। सीधा सिद्ध परमिष्टि को ही नमस्कार करते हैं। इससे पहले करते थे, वाणी भी सुनते थे, किससे पहले? तीर्थंकर कर्म को बांधने से पूर्व नमस्कार करते थे, उपदेश सुनते थे। उपदेश सुनकर के ही तो उनको सम्यक दर्शन हुआ। राजा श्रेणी को सुना है नाम? राजा श्रेणी कौन थे? महावीर भगवान के समोसरण में उत्तम श्रोता थे, श्रावक थे। उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कारण एक दिगंबर गुरु ही बन गए। उनका उपदेश सुनकर उन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया। वो गुरु भी जिनके ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया था, वे ही गुरु सम्यक्तों की उत्पत्ति में कारण बन गए। इससे पूर्व भूमिका उनकी पत्नी चेलना उस सम्यक्तो की उत्पत्ति में कारण बनी, वो लंबी चौड़ी कथा है। उसको सुनने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, सुनाने के लिए नहीं जा रहे। अपने को ये समझना है कि तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने से पहले जो सम्यक दर्शन होता है वे गुरु या भगवान की वाणी को सुने बिना तो होता नहीं, किसी के भी वाणी को। एक देव भी भगवान की वाणी को उनके मुख से वो सुना देता है तो उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। कोई स्वाध्याय से सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, कोई किसी के भगवान की वाणी को किसी के माध्यम से सुन लिया तो उसके ऊपर भी उसके आश्रय से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। सम्यक दर्शन सर्वप्रथम होगा दूसरे के आश्रय से, पर सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद यदि तीर्थंकर कर्म का बंद किया तो तीर्थंकर कर्म को बंद करने के उपरांत वह किसी का आश्रय नहीं करेगा। जैसे राजा श्रेणिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के टाइम में तो दूसरे का आश्रय लिया, तीर्थंकर कर्म का बंद होने के पश्चात वे तो अभी नरक में हैं, नरक से यहाँ आकर तीर्थंकर बनने वाले हैं। नरक गए ना? किस कारण से गए? मुनि के गले में सर्प डाल करके उपसर्ग किया, इतना बड़ा पाप कर्म किया, उसी के फल स्वरूप वे नरक में हैं आज। तीर्थंकर कर्म को बांधने के बाद भी नरक जाया जा सकता है? देखो नरक गति का बंद हुआ, इसलिए जाना तो पड़ा। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के बाद भी वो माफ नहीं करता। गति कर्म एक बार बंद जाता है तो माफ नहीं होता, बहुत कठोर कर्म है वो गति आयु कर्म। नरक की आयु पहले बंदी, फिर सम्यक दर्शन हुआ, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, फिर वो नरक गति बंदी थी इसलिए नरक गए, और वहाँ से आकर के अब तीर्थंकर बनेंगे। जब तीर्थंकर बनेंगे तब किसी का उपदेश नहीं सुनेंगी वो। नहीं, वहां से आकर के डायरेक्ट तीर्थंकर बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, उसी मनुष्य पर्याय से तीर्थंकर बनेंगे। वहां से आएंगे एक बार और मनुष्य बनेंगे, फिर कहीं जाएंगे स्वर्ग आदि, फिर तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा नहीं। सीधा ही आकर के तीर्थंकर बनने वाला जीव, ये ध्यान में रखना है, तीर्थंकर बनने वाला जीव दो ही गति से आता है, या तो नरक से आता है, या तो देव गति से आता है, या तो ऊपर से आता है, या तो नीचे से आता है, आजू बाजू से नहीं आता वो। मनुष्य गति से या तिर्यंश गति से इधर उधर से आकर के तीर्थंकर नहीं बनता। हाँ, ये संभव है तीर्थंकर कर्म को मनुष्य भव में बांधने के उपरांत वो स्वर्ग न जाए, नरक न जाए, ऐसा हो सकता है। तीर्थंकर कर्म को बांध लिया और बांधने के बाद उसी भव से तीर्थंकर बन करके मोक्ष चले गई, ऐसा हो सकता है। पर आना मनुष्य गति से आकर मनुष्य बनकर तीर्थंकर नहीं बन सकते। जीव की कौन सी गति? हाँ, बांध सकता है। गति देखो, जीवन में किसी भी समय में बांधता हो, चर्चा उसकी नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि तीर्थंकर कर्म को बांधने के बाद मोक्ष, तीर्थंकर बनना तो निश्चित है, पर तीर्थंकर कर्म का बंध देवगति में भी नहीं कर सकते, नरक में भी नहीं कर सकते। बंध की जो शुरुआत होगी वो मनुष्य गति से ही होगी। बंध की शुरुआत मनुष्य गति से हो, बंधने के बाद फिर नरक में भी जाया जा सकता है, देवगति में भी जाया जा सकता है। हाँ, केवली अथवा श्रुत केवली, इनके पाद मूल में तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के चरणों में, उनके सानिध्य में तीर्थंकर कर्म का बंध किया। कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के समोह शरण में तीर्थंकर कर्म का बंध किया। ऐसा केवली भगवान के चरणों में इसका बंध होता है। बंध का प्रारंभ होना और बंध हो जाना ये मनुष्य गति में ही संभव है। मनुष्य में भी जो सम्यक दृष्टि है, जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, उन्हीं को बंध होगा तीर्थंकर कर्म का। और बंधने के बाद यदि वो नरक गए तो नरक से आकर के तीर्थंकर बनेंगे, और यदि देवगति में गए तो देवगति से आकर के तीर्थंकर बनेंगे। यदि मनुष्य बने तो मनुष्य बन सकते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर कर्म का बंद होने के बाद कोई भी मनुष्य गति में जाकर जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि वहां से आकर यहाँ तीर्थंकर नहीं बन सकते। क्या कारण है मनुष्य गति में नहीं जाते, तिर्यंश गति में नहीं जाते? नरक तो जा रहे हैं और तिर्यंश गति में नहीं जाते और मनुष्य गति में नहीं जाते, क्या कारण है? उसका कारण ये है, तीर्थंकर बनने वाला जीव ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाता है। चार भव नहीं लगेंगे उसको, तीन ही भव में मोक्ष जाएगा, ये नियम है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद अधिक से अधिक तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाता है, या तो उसी भव से मोक्ष जाता है जिस भव में उन्होंने बंद किया है। परंतु यदि मनुष्य गति का बंद किया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा। आगामी मनुष्य गति का बंद किया है तो उसको तीर्थंकर कर्म का बंद होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे भव में मोक्ष जाना अनिवार्य होता है उसको, वो नहीं होने वाला है। अब देखो, यदि मनुष्य गति को बंद किया, मनुष्य आयु को बंद किया और तीर्थंकर प्रकृति को भी बंद किया तो कितने भव बैठते हैं देखना। वो सम्यक दृष्टि तो रहेगा ना, सम्यक दृष्टि रहेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में जन्म ले सकता है क्या? यदि ले भी ले तो भोग भूमि का मनुष्य हो सकता है, मान के चले वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। और क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करने से पहले ही मनुष्य गति का बंद कर चुका है, और मनुष्य गति को बंद कर चुका है तो मनुष्य गति में तो जाना पड़ेगा, मनुष्य गति में जाना पड़ेगा। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, एक तो बंद हो नहीं सकता, मान के चले कि यदि बंद भी किया तो किधर जाएगा? कर्म भूमि का मनुष्य होगा या भोग भूमि का? वो भोग भूमि का मनुष्य होगा। भोग भूमि का मनुष्य होगा तो भोग भूमि से मरण करके किस गति में जाना पड़ेगा? क्या नियम है? तो देव गति में ही जाता है भोग भूमि का जीव, देव गति में जाएगा। देव गति में जाने के उपरांत फिर मनुष्य गति में ही आना पड़ेगा। तो ये कितने भव हो गए? ये ज्यादा हो गए, ये चार होने लगे। एक भव ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भोग भूमि चला गया, और निषिद्धांत के अनुसार वहीं जाना पड़ेगा, और वहां से देवगति में जाना पड़ेगा, और देवगति से आकर के पुनः मनुष्य बनना पड़ेगा। तो चार भव घटित होने लगे। तो चार भव लगते नहीं, तीन भव ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मनुष्यायु को बंद करने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तीन भव से ही मोक्ष जाना है, चार भव से नहीं। समझ में आ गया? हाँ, मनुष्य गति बांधी तो चार भव लगेंगे, चार भव लगेंगे। एक ये मनुष्य भव, फिर वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, फिर देव बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा, और वो चौथा भव हो गया। और चौथे भव से मोक्ष जा रहा ऐसा नहीं होता है, चौथे भव से मोक्ष जाता ही नहीं। इसलिए मात्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव दो गति में जाएगा ही नहीं, तिर्यंश गति और मनुष्य गति, दो गति में नहीं जाएगा, क्योंकि चार भव लगते हैं। तिर्यंश गति में जाएगा तो वहां का भोग भूमि का तिर्यंश बनेगा, कर्म भूमि का तिर्यंश तो बनेगा नहीं। भोग भूमि का तिर्यंश बनेगा तो भोग भूमि का तिर्यंश स्वर्ग ही जाएगा, और वहां से आकर पुनः मनुष्य बनेगा। तो इसमें भी चार भव हो रहे हैं। इसीलिए ये सिद्धांत बन गया है कि तीर्थंकर बनने वाला जीव या तो स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बनता है, या तो नरक से आकर के तीर्थंकर बनता है, या तो उसी मनुष्य पर्याय में तीर्थंकर कर्म को बांधकर उसी मनुष्य पर्याय से तीर्थंकर बन सकता है उसी भव से। तीन ही रास्ते हैं तीर्थंकर बनने के लिए, या तो उसी भव से बनो, तीर्थंकर कर्म को बांधकर तीर्थंकर बन जाओ। तो ऐसा होता है, कहाँ होता है? ये विदेह क्षेत्र में होता है, ये ध्यान में रखना है। विदेह क्षेत्र में ऐसा होता है। एक तीर्थंकर का उपदेश सुन लेते हैं, उसी तीर्थंकर के सानिध्य में कोई गृहस्थ तीर्थंकर कर्म का बंद कर लेता है। गृहस्थ भी कर सकता है और मुनि भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, या तो मुनि करता है या तो गृहस्थ करता है। किसी ने एक ने कर लिया, तीर्थंकर कर्म का बंद हो गया, और वो सामने वाले तीर्थंकर मोक्ष चलने जाने के बाद इनको केवल ज्ञान होगा, इस मुनि को। या तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है तो वह मुनि दीक्षा लेंगे, और मुनि दीक्षा लेकर के तीर्थंकर बन जाएंगे। उनको दीक्षा कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक होगा, और निर्वाण कल्याणक होगा। गृहस्थ अवस्था में यदि तीर्थंकर कर्म का बांधा है तो तीन कल्याणक होंगे उस जीव के, देवों द्वारा। देव लोग कल्याणक करते हैं ना, पांच कल्याणक, उसमें से तीन कल्याणक होंगे। गृहस्थ यदि बांधता है तो तीन कल्याणक होंगे, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, निर्वाण कल्याण। और यदि मुनि महाराज बांध लेते हैं तीर्थंकर कर्म का बंध और उसी पर्याय से तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनको दो कल्याणक होंगे। मुनि अवस्था में तो तीर्थंकर कर्म का बंध किया, उस समय तो होता नहीं, पहले से ही दीक्षित थे, इसलिए दीक्षा कल्याणक होगा नहीं, दीक्षा हो चुकी है, अब क्या कल्याणक। दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने तीर्थंकर कर्म का बंध किया तो तब कल्याणक नहीं होगा। मुनि महाराज हो तो तब कल्याणक नहीं होगा, उनको केवल ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा, दो ही कल्याणक होंगे। ऐसे कल्याणक तीर्थंकर बनने वाले जीव को दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं और पांच भी होते हैं। भरत क्षेत्र में दो और तीन हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक के बाद एक तीर्थंकर होते हैं, सामने सामने नहीं होते। भरत क्षेत्र में तो हमेशा अनादिकाल से पांच ही कल्याणक वाले हुए हैं, अनादिकाल तक जो भी तीर्थंकर होने वाले वो पांच कल्याणक वाले ही होंगे। विदेह क्षेत्र में दो भी होंगे, तीन भी होंगे, पांच भी होंगे, ऐसा नियम है। तो हाँ, मनुष्य गति में जन्म ले सकता है, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में जन्म ले सकता है, लेकिन भोग भूमि का ही मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का मनुष्य सम्यक तो सहित नहीं बन सकता। जैसे कि विदेह क्षेत्र चले जाए यहाँ से अपन, कई लोग सोचते हैं ऐसे, हम सम्यक दृष्टि बनेंगे, धर्म करेंगे और सीधा विदेह क्षेत्र जाएंगे। सीधा विदेह क्षेत्र नहीं जान सकते आप, कहाँ जाएंगे पहले, या तो भोग भूमि जाएंगे, या भोग भूमि में नहीं जाएंगे तो देवगति में ही जाना पड़ेगा। देवगति से आकर फिर मनुष्य गति में आकर मोक्ष जाना पड़ेगा। हाँ, भोग भूमि से सीधा स्वर्ग जाएगा, पहला स्वर्ग या दूसरा स्वर्ग, दो ही स्वर्ग में जन्म लेगा, वहां से आकर फिर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकता है। विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि भी जन्म लेते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव भी जन्म लेते हैं। भोग भूमि विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में तो कर्म भूमि का जीव ही जन्म लेता है और मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकता है, सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेगा, सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेगा, मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेता है। मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य से कर्म भूमि का मनुष्य बनना हो तो सम्यक दर्शन नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा नियम है, सिद्धांत है। सम्यक तो सहित कर्म भूमि में उत्पन्न होना संभव नहीं, अनादि से आज तक ना कोई एक जीव उत्पन्न हुआ है ना होगा, ये सब निसर्ग के जो नियम हैं, प्राकृतिक नियम हैं, ये किसी ने बनाया नहीं, नैसर्गिक नियम है। इस नियम के अनुसार ही हमारा गमनागमन होता रहता है किसी भी गति में। सम्यक तो जीव विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं लेगा, पहले मनुष्य है, देवगति में ही जाएगा या तो भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है, कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा। विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है क्या भोग भूमि? कर्म भूमि, क्योंकि वहां भी कर्म करना है, कुछ न कुछ करना है, करके ही मरना है। कर्म भूमि में करके मरना पड़ता है, भोग भूमि में करके नहीं मरना पड़ता है, भोग के मरना पड़ता है। बैठे बैठे भोग वस्तुएं मिलती हैं, पुण्य का फल भोग कर मरण करना पड़ता है। कर्म भूमि में करके कमाना पड़ता है, करके खाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। भोग भूमि में तपस्या नहीं करनी, कर ही नहीं सकते, क्योंकि भोग भूमि के मनुष्यों का जो शरीर है वो तप के लायक नहीं है, इसलिए तप नहीं कर सकते, वहां से मोक्ष नहीं है। भोग भूमि के जीव उस पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकते, उस पर्याय से संयम धारण नहीं कर सकते। भोग भूमि के जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा चार ही गुणस्थान हैं और कर्म भूमि के जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा 14 गुणस्थान हैं, 1 से लेकर 14 तक। भोग भूमि में 4 ही गुणस्थान। टाइम हो गया है, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं है ना, आज पहली बार हुआ आप लोगों का, नहीं तो बांधना शुरू हो जाता है। इधर ही मग्न है सुनते सुनते। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दिया है, धर्म की उत्पत्ति आत्मा में होती है, स्वयं आत्मा के द्वारा होती है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, वह साधन रूप रहे या साध्य रूप रहे, उन दोनों को धर्म कहा जाता है। इन दोनों का आधार पंच परमिष्टि होते हैं, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमिष्टि। इन चारों के पास साधन रूप धर्म होता है, अतः सिद्ध परमिष्टि के पास साध्य रूप धर्म होता है। वस्तु के शुद्ध स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु का शुद्ध स्वभाव सिद्ध भगवंत में पाया जाता है या शेष चार परमिष्टि में? सिद्ध भगवान के पास, क्योंकि चार परमिष्टि के पास शरीर भी है, कर्म भी हैं, तो वस्तु शुद्ध नहीं है। कर्म और शरीर से मुक्त होने के बाद, अज्ञान से मुक्त होने के बाद, सिद्ध भगवान बनने के बाद ही वस्तु का शुद्ध स्वभाव जीव को प्राप्त होता है। उसी शुद्ध स्वभाव को पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ता है। ये साधन रूप धर्म है और शुद्धता ये साध्य रूप धर्म है। साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, यह सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के अनुसार आज न कल हमको मोक्ष जाना पड़ेगा, साधन को अपनाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय अन्य नहीं है। साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो धर्म की जय।
पवित्र मुख से निश्रुत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब नाना विषयांद।